ये आकाशवाणी है। अब आप चारू सक्सेना से समाचार सुनिए। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। शाम 5 बजे तक करीब 58% मतदान दर्ज किया गया। और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता दिवाकर के पास। दिवाकर
जी, चलो।
हाँ जी दिवाकर, मतदान शाम 6 बजे संपन्न हो चुका है, तो दिन भर मतदान का रुझान कैसा रहा?
चलो, आधिकारिक तौर पर मतदान का समय तो खत्म हो चुका है, लेकिन 6 बजे के बाद भी कुछ इलाकों में जो मतदान केंद्रों पर लोग देखे जा रहे थे। और जो चुनाव आयोग की तरफ से जो 5 बजे तक के आंकड़े के अनुसार जो है 58% मतदान दर्ज किया गया है। क्योंकि ये 5 बजे तक के ही आंकड़े हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि देर रात जब अंतिम आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाएगा, तो ऐसी संभावना है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो 62% वोटिंग हुई थी, उससे ज्यादा वोटिंग इस बार दर्ज की जा सकेगी। दिल्ली के आंकड़े हमें सामने को देखने को मिलेंगे। दिन भर शहर के विभिन्न इलाकों में जो मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला, खास करके उत्तर पूर्वी दिल्ली में, जहां अभी तक के आंकड़ों के अनुसार जो दिल्ली के 11 जिले हैं उसमें सबसे ज्यादा 64% वोटर टर्नआउट देखने को मिला है। चारू, देर रात जो ईवीएम है, बंद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में भेजा जाएगा, और जहां शनिवार को जो दिल्ली के 19 मतदान केंद्र हैं, मतगणना केंद्र हैं, वहां पे मतों की गिनती की जाएगी। और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता में बनी रह पाती है, या भाजपा जो लंबे समय से दिल्ली में की सत्ता से दूर है वो वापसी कर पाती है, या कांग्रेस जिसने इस बार काफी जोर लगाया है क्या वो इस बार खाता भी खोल पाती है।
जी बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर, आपने हमें बहुत अच्छे से जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन चुनावों में प्रमुख उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी और मंत्री गोपाल राय, भाजपा के विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा, रमेश भिधूड़ी और कैलाश गहलोत, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और अलका लांबा शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर और तमिलनाडु की इरोडपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी संपन्न हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक मिल्कीपुर में 65% से अधिक, वहीं इरोडपुर में 64% से अधिक मतदान की खबर है। इन दोनों सीटों पर मतगणना दिल्ली विधानसभा के साथ शनिवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। श्री मोदी ने कहा कि संगम पर स्नान करना दिव्य जुड़ाव का क्षण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मां गंगा देशवासियों को शांति, ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और सद्भाव का आशीर्वाद देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने के लिए अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 2,806 लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित त्रिपुरा और विकसित भारत प्रयासों का हिस्सा बन गए हैं। श्री शाह ने कहा कि एक समय उथल पुथल और भ्रष्टाचार का सामना कर रहा राज्य अब विकास के पथ पर अग्रसर है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम अल्टमैन से मुलाकात की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के पक्षधर हैं और श्री अल्टमैन ने प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की सराहना की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन ग्यांग से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने बहुपक्षीय सुधारों की आवश्यकता सहित संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्माइली मुसलमानों के धर्मगुरु करीम आगा खान चतुर्थ के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि राजकुमार करीम आगा खान दूरदर्शी व्यक्ति थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा और अध्यात्म को समर्पित कर दिया। श्री आगा खान का 88 वर्ष की आयु में पुर्तगाल में निधन हो गया। सिंगापुर स्मैश विश्व कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मानुष शाह और मानव ठक्कर पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने हांगकांग के वॉन चुंग तिंग और यी क्वान को 3-0 से हराया। देहरादून में राष्ट्रीय खेलों में आज निशानेबाजी में हरियाणा की सुरुचि ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।